الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور پچھلی کلاس میں ان آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی 110 اور 111، ان کے معارف و مسائل ہم نے پڑھنے شروع کر دیے تھے. پیج نمبر 161 کے اوپر ہم تھے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ عاجز جو ہے وہ کچھ وجوہات سے کی وجہ سے جو پچھلی آیات تھیں تو ان کے موضوع سے متعلق مزید کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو پچھلی جو آیات تھیں تو ان کے معارف و مسائل میں نہ، بلکہ ان کے معارف و مسائل میں بھی نہیں، ان کے احکام و ہدایات میں، یعنی پیج نمبر 158 کے اوپر حضرت مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے اخبار غیب اور علم غیب میں فرق کے اوپر کچھ باتیں لکھی تھیں. تو اس میں ایک منٹ، تو ہاں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یعنی بات کو تھوڑا مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سے جو ہے وہ اکثر اس موضوع میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی سوچ کی غلطیاں، کچھ ایسی جو ہے وہ ہمارے رویوں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ علم الغیب اور اخبار الغیب کے اندر کیا فرق ہے، اور یہ کس کو حاصل ہے اور کس کو نہیں حاصل ہے وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ایک بہت ہی ہائی لیول سپرفیشل، سپرفیشل کا لفظ تو زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، ذرا ہائی لیول ایکسپلینیشن تو ہم نے پڑھ لی تھی کتاب کے اندر کہ بھائی علم الغیب جو ہے نا، یعنی جو ساری کی ساری الغیب کی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، تو یہ جو ہے صرف اور صرف علم الغیب اللہ رب العزت کو حاصل ہے، اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ علم الغیب حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ رب العزت نے غیب کی سب سے زیادہ خبریں عطا فرمائیں، ٹھیک ہے، تو چونکہ بہت زیادہ خبریں عطا فرمائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ سے نہ صرف کے ماضی کی بہت ساری بات اپنی امت کو بتائیں بلکہ حال میں بھی بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کا جو ہے وہ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسروں کو نہیں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کسی چیز، جیسے کوئی صاحب کوئی جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے، ان کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک قبیلے کے سردار تھے، بلکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب، تو انہوں نے راستے میں جو ہے نا وہ اپنے اونٹ جو ہے وہ 2 عدد اونٹ جو بہترین تھے وہ چھپا لیے تھے. ठीक है, और बाकी जो है ना वो लेकर के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में बतौर हदिया के पेश किया करके। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि वो ऊंट किधर है जो तुमने वहां पे छुपा दिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो है ना वो नबुवत के ऊपर हमें दलील मिल जाती है और हमें पता, यानी इस तरह के बहुत सारे वाकयात नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी पेश आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से किसी चीज के बारे में बता दिया जो कि जाहिरी बात नहीं थी, जो कि 5 या इवन 6 सेंसेस से भी परसीव नहीं की जा सकती थी, ठीक है। तो ये तो हाल की खबरें थी, उसके अलावा जो है वे फ्यूचर की इतनी सारी खबरें कि आगे क्या होने वाला है, दुनिया की जिंदगी में क्या क्या पेश आने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो खिलाफत राशिदा के बारे में बताया कि मेरे जाने के बाद इतने साल जो है वो खिलाफत राशिदा रहेगी, फिर इसके बाद जो है वो बादशाहत आ जाएगी, फिर इसके बाद जो है वो यानी जब्बार लोग किस्म के लोग आ जाएंगे, और फिर ये जमाने दज्जाल में ये सब कुछ होगा, दज्जाल का फितना होगा, याजूज माजूज, इतने सारे तातारियों के फितने के बारे में, राइट, तातारियों के फितने के बारे में बताया, और न जाने क्या क्या चीजें, और आखिरी दौर के कयामत की निशानियां बहुत सारी बताई, फिर उसके बाद अहमद के हालात वो कितने सारे बताए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, ये सब का सब जो है ये अखबारुल गैब कहलाता है, ये इल्मुल गैब नहीं कहलाता, ठीक है। तो इल्मुल गैब जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है, अखबारुल गैब नबी अलैहिस्सलाम के पास है। लेकिन हमसे क्या गलती होती है जिसका कि हम कई दफा जो है वो तذکرہ भी कर चुके हैं अपने बयानात के अंदर, भी पहले भी ये तذکرے हो चुके हैं कि हम जो अहले हक के साथ जुड़े हुए हजरात व खवातीन हैं, ठीक है, तो हम और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, दुनियावी एतबार से भी पढ़े लिखे हैं, दीनी एतबार से भी माशाल्लाह अब तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो हमसे एक बहुत बड़ी गलती होती है। वो क्या गलती होती है जरा जल्दी से बताएं, किसी को याद है? हम पढ़े लिखे बड़े रोशन ख्याल किस्म के जो दीनदार लोग हैं, यानी मैं उनकी बात नहीं कर रहा रोशन ख्याल से, वो वाली रोशन ख्याल नहीं, बल्कि बड़ी पॉजिटिव रोशन ख्याली की बात कर, और अहले हक उलमा काबरीन के साथ जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, उलमा देवबंद के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो क्या होती है हमसे? जी ठीक है ना, हमसे क्या गलती होती है, इन्होंने आधी बात लिखी है, पूरी बात नहीं लिखी, ठीक है, आधी बात लिखी है। वो क्या कि हम जो है ना नबी अलैहिस्सलाम से तो इल्मुल गैब की नफी करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्मुल गैब हासिल नहीं है ना भाई, ये है ना देवबंदी मसलक, राइट। और हम कहते हैं कि जी ये जो बरेलवी हैं और जो अहले बिदत हैं ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब थे, और ये तो इल्म वाले नहीं है, ये तो जहालत में ये बातें कर देते हैं, ये गलत फहमी में ये बातें कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने उलमाए देवबंद के बारे में एज इफ यही अकीदा रखते हैं, हम अपने अकाबरीन के बारे में, अपने शेख के बारे में, अपने शेखुल इस्लाम के बारे में, अपने जो है ना वो शेखुल हदीस रहमतुल्ला अलैह के बारे में, या कोई और शेखुल हिंद हो गए या जो है वो कोई और हो गए, उनके बारे में हम यही अकीदा रखते हैं, जुबान से नहीं कहते लेकिन अपनी बातों से ऐसे करते हैं कि जैसे कि उनको इल्मुल गैब हासिल है, ठीक है ना। जैसे इन लोगों ने लिखा कि अपने शेख को भी ऐसे समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है, एंड वी एज्यूम दैट आवर शेख नोज एवरीथिंग एंड डोंट एक्सप्लेन और आस्क द शेख, है ना। शेख को हमारी बात बारे में भी सब कुछ पता है कि हमारे दिल में क्या है और हमारी नीयत क्या है और हमारा फ्यूचर क्या है और हमारा माजी क्या है और हमारा हाल क्या है, राइट। शेख मेरे बारे में भी आलमुल गैब हैं, बल्कि उससे आगे बढ़ करके शेख साहब जो हैं वो दुनिया के मामलात के बारे में भी आलमुल गैब हैं, दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और क्या जो है वो इस वक्त हो रहा है सब कुछ पता है शेख साहब को, और शेख साहब से जो है ना वो कोई गलती नहीं हो सकती, राइट। शेख साहब से कोई गलती नहीं हो सकती किसी चीज के बारे में भी, ना हाल के बारे में कोई गलती हो सकती है और ना जो है वो मुस्तकबिल के बारे में कोई गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम से तो हम नफी करते हैं जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्मुल गैब नहीं था, अखबारुल गैब थी, लेकिन अपने जो अकाबरीन हैं, अपने जो शेख हैं, अपने जो उलमा हैं, उनके बारे में हम कैसे जो है वो इसका इस बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से जो है वो फिर शैतान को मौका मिल जाता है और वो फिर हमें बहुत बड़े नुकसान में मुबतला कर देता है, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि शेख साहब जो हैं या अकाबरीन जो हैं वो किसी चीज के बारे में अगर कोई एक राय कायम करते हैं या कोई मुज्तहिदाना किस्म का एक ओपिनियन देते हैं, तो भाई इज्तिहाद के अंदर तो गलती भी हो सकती है, मुज्तहिद से तो गलती भी हो सकती है, राइट। और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसूल ये है शरीयत का कि नबी अलैहिस्सलाम से अगर इज्तिहादी गलती होती, नबी अलैहिस्सलाम से जब कभी इज्तिहादी गलती हो जाती, तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को उस गलती पर फौरन मुतनब्बे फरमा करके उसकी इसलाह फरमा देते थे। लेकिन जो गैर नबी हैं, मुज्तहिद हजरात जो गैर नबी हैं, उनकी गलती के ऊपर अल्लाह ताला उनको मुतनब्बे भी नहीं फरमाते, उनकी गलती की इसलाह भी नहीं फरमाते। जैसे मिसाल के तौर पर चार अइम्मा कराम हैं, उन चारों ने इज्तिहाद किया इस बात के ऊपर कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें क्या हैं, राइट, के नमाज में नबी अलैहिस्सलाम की क्या सुन्नत है, कैसे हाथ बांधना सुन्नत है, कैसे जो है वो रुकू में जाना सुन्नत है, कैसे जो है वो तिलावत करना सुन्नत है, राइट, जकात में सुन्नत क्या है, रोजे में क्या, बहुत सारी चीजें इस तरह की फिकी इख्तलाफात जिनको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनमें से चारों जो है वो सुन्नत पे तो सही नहीं है ना, चारों में से कोई एक ही सही है और बाकी तीन जो होंगे वो इज्तिहादी गलती के मुर्तकिब हुए, शिकार हुए इज्तिहादी गलती क्या, राइट। चारों ने तो अगर अनलेस ये कि किसी बात के ऊपर चारों मुत्तफिक हो जाएं या किसी बात के ऊपर तीन मुत्तफिक हो जाएं और एक का जो है वो अलग मजहब हो, तो भाई गलती तो हो ही है ना किसी से। लेकिन इस गलती के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में करेक्ट नहीं किया, हत्ता कि हमने तो अपने मशायख से ये तक सुना कि मशायख में जो है ना वो आपस में ये बात हुई, बड़े बड़े जैसे हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह या कोई और बहुत बड़े, कि भाई क्या कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इस बात को खोलेंगे कि इन चारों मशायख में से, इन चारों आइम्मा कराम में से कौन गलती पर था और कौन जो है वो दुरुस्त, किसने दुरुस्त इज्तिहाद किया था। तो उन्होंने जवाब दिया गालिबन अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन भी उनकी गलती को नहीं खोलेंगे, क्योंकि गलती का खुल जाना जो है ये एक इंसान के लिए पेशेमानी का सबब होता है, शर्मिंदगी का सबब होता है। और ये मुज्तहिदीन हजरात इतने मुखलिस थे और इतने मुत्तकी थे, इतने जो है वो इश्क यानी आशिक इलाही थे, खशियत के इतने बड़े दर्जे के ऊपर फाइज थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इन बंदों को कयामत के दिन भी रुसवा नहीं करेंगे उनकी गलती को खोल करके। तो किसी को पता नहीं चलेगा, कयामत के दिन भी किसी को पता नहीं चलेगा कि इन अइम्मा में से किसने गलती करी थी, राइट। लेकिन यहां पर मौजू क्या है कि भाई गलती हुई थी ना किसी से, उम्मत को तो उनकी गलती के ऊपर भी सवाब मिल रहा है कि हम अगर इमाम शाफी को फॉलो करके कोई काम कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई यानी जो शाफी हजरात हैं, ये नहीं कि मैं किसी दिन शाफी और किसी दिन मालिकी और किसी दिन हम्बली, बल्कि जो शाफी हजरात हैं वो सारी जिंदगी अगर किसी ऐसी चीज को सुन्नत समझते रहे जो कि असल में सुन्नत नहीं थी, असल में सुन्नत तो न जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरीका बताया था वो सुन्नत थी, ये सारी जिंदगी सुन्नत समझ करके गलत चीज के ऊपर अमल करते रहे जो कि सुन्नत नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी कर लिया था लेकिन वो सुन्नत नहीं थी, तो इनको पूरा पूरा सवाब मिलेगा, पूरा पूरा उस अमल का सवाब मिलेगा, गलत फहमी के बावजूद पूरा सवाब मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो भाई उनके पास इल्मुल गैब अगर होता, अगर उनके पास इल्मुल गैब होता, इमाम अबू हनीफा के पास होता, इमाम शाफी के पास होता, इमाम मालिक के पास होता, इमाम अहमद इब्ने हम्बल के पास होता, तो गलती कैसे करते फिर वो, राइट। ये सारी डिस्कशन गलती की है ना, तो फिर वो गलती कैसे करते। तो भाई चारों अइम्मा जो है उनके पास भी इल्मुल गैब नहीं है, इसके ऊपर भी हम सारे के सारे मुत्तफिक हैं। लेकिन आज के दौर के मशायख के बारे में हम इसी बात पे मुसर हो जाते हैं कि नहीं उनके पास इल्मुल गैब है। ठीक है, तो भाई इल्मुल गैब का ना होना जो है ना, ये असल में तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, इल्मुल गैब का ना होना। देखिए नबी अलैहिस्सलाम का मामला तो रसूल का है ना, अल्लाह के रसूल, ठीक है ना। तो अल्लाह के रसूल का जो जो अमल है वो तो अल्लाह की मशीयत से होता है, ठीक है ना। वमा यंतिकानिल हवा, वो कोई बात नहीं करते जो अपनी अपनी जाती ख्वाहिश की बुनियाद पर हो, सारी की सारी अल्लाह की ख्वाहिश से, ठीक है ना। और उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा है। जुनेद जमशेद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनका गाना गाना अस्तग़फ़िरुल्लाह, उनका जो है वो याद है ना नात, कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा नबी अलैहिस्सलाम की, तो हदीस मुबारक, ये भी जो है वो शरीयत का हिस्सा है ना। लेकिन ये मुकाम जो है वो किसी और को तो हासिल नहीं है। हाँ, जो सुन्नतें खुलफाए राशिदीन की सुन्नतें हैं, तो वो भी नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमा दिया कि खुलफाए राशिदीन की इनकी सुन्नतों को भी अपने यानी दाढ़ से पकड़ करके रखो, ठीक है ना। तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को भी ये वाला मुकाम मिल गया कि हम उनकी सुन्नतें भी जो है वो उसी से हम दीन, उसको भी हम दीन समझते हैं। लेकिन बाद वालों की जो सुन्नतें हैं, बाद वालों के जो अमाल हैं, उनको तो हम दीन नहीं समझ सकते हैं ना। हो सकता है उनसे, और यानी जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने किया या सहाबे कराम ने किया, उसकी एक्सप्लेनेशन तो हम उनसे लेते हैं। लेकिन ये तो नहीं होता ना कि फलाने शेख साहब की जो सुन की जो का जो आदत थी वो जो है वो दीन का हिस्सा बन गई, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इल्मुल गैब का ना होना, ये देखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई गलत बात बताता है या कोई गलत काम करता है, राइट, जो कि सही नहीं है, लेकिन उसको सही चीज का पता था, उसके बावजूद उसने कोई गलत बात करी या उसने दूसरों को कोई गलत बात कही, हालांकि उसको पता था कि सही बात क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है जरा बताएं, कि जिस शख्स को सही बात का इल्म हो, इसके बावजूद वो गलत अमल करे और दूसरों को भी गलत बात बताए, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब होता है कि वो झूठ कह रहा है, ठीक है ना। बगावत बगावत क्या, झूठ है ना। इसका एक मतलब होता है कि उसकी नीयत खराब है, वो सही बात जानने के बावजूद गलत काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में जानते बूझते हुए गलत काम करना, जानबूझ के गलत काम करना है ना, इसी को तो कहते हैं जानबूझ के गलत काम करना, ठीक है ना। तो या तो बदनीयती का मसला है कि बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है, या दूसरा मसला क्या होगा कि उसकी अकल में कोई मसला है, उसकी अकल में कोई मसला है कि उसको सही बात पता है लेकिन उसके बावजूद वो गलत बात कर रहा है, राइट। तो या तो उसकी उसकी नीयत खराब है या उसकी अकल खराब है, कि उसके पास इल्म है फिर भी उसने कोई गलती करी, राइट। हमारे जैसा कोई बंदा होगा कि जानते बूझते हुए भी जो है या तो गलत काम करता है, यानी हमारी बदनीयत ही होती है हमारी, या ये कि हमारी जो है वो अकल इतनी खराब होती है कि हम बात को जानते भी हैं लेकिन फिर भी जो है वो गलत काम कर रहे होते हैं। हमारा जैसा कोई बंदा होगा, या ये कि हमसे भी ज्यादा बदतर, जैसे कि कौन, अबू जहल, राइट। अबू जहल को पता था कि नबी अलैहिस्सलाम सादिक हैं, अमीन हैं, कोई बात गलत नहीं करते, उसको पता था ये वाली बात, लेकिन फिर भी मुखालफत करता था, राइट। उसी तरह से यहूदे मदीना, उनको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, वो आप सरसरम को, कुरान इसके ऊपर गवाह है ना, कि वो आप सरसरम को अपने बेटों से भी इसकी तरह जानते थे, जैसे इंसान अपने बेटे के बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकता, वो आप सरसरम के बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं थे लेकिन फिर भी मुखालफत करते थे। तो जानबूझ करके इल्म के बावजूद मुखालफत करना, इल्म के बावजूद हक की मुखालफत करना, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, कि नहीं है, ठीक है। तो हम ये ना क्या करें, ठीक है ना। तो भाई अब जो उलमा होते हैं, जो मशायख होते हैं, वो इज्तिहाद करते हैं, उनके पास इल्म है, इल्म हासिल किया उन्होंने,
उसकी बुनियाद पे उन्होंने नेक नियति के साथ कोई नतीजा अखज किया किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो भाई उनमें फिर इल्मी इख्तिलाफ भी हो जाता है, किसी और ने कोई और नतीजा अखज किया, किसी ने और ने कोई और नतीजा अखज किया, ठीक है। तो अब इसके बारे में इतना शिद्दत पसंद हो जाना कि नहीं, जो मेरे शेख कह रहे हैं वो 100% सही है, वो भाई कोई कुरान है, कोई हदीस है जिसके के जो ऑथेंटिसिटी है वो कंफर्म है। कुरान मजीद और हदीस मुबारक, और हदीस मुबारक के अंदर भी मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, मुतवातिर, मशहूर और खबर वाहिद, राइट। हर हदीस भी इतनी कंफर्म नहीं है, वरना तो भी सारी की सारी जो है वो कतियो दलाला होती है ना, कतियो सबूत होती है ना, ठीक है ना। तो भाई किसी ने अगर कोई ओपिनियन लिया, किसी दूसरे ने कोई दूसरा ओपिनियन लिया, तो इसमें एहतमाल तो है ना गलती का, ठीक है ना। ये मामला तो दीनी उलूम के अंदर, दीनी उलूम के अंदर जो कि उनका एरिया है, जो कि उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसके अंदर भी बड़े बड़े मशायख से जो है वो गलती हो सकती है, राइट। हम उनके ना तो हम उनसे नफरत करें, ना हम उनके जो है वो उनको जो है वो बुरा समझें, ना उनको हम बदनीयत समझें, राइट, और ना हम उनको नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला कम अकल समझें, कम इल्म समझें। भाई उन्होंने इज्तिहाद किया है, इज्तिहादी तौर पे गलती हो सकती है उनसे। अगर हम उनको ये तसव्वुर करना शुरू कर दें कि ये तो सब जानते हैं, तो फिर अगर उन्होंने गलती करी जिसका कि हमें पता नहीं चला, कल को पता चल गया कि हाँ उन्होंने गलती करी थी, तो फिर क्या होगा? फिर या तो आप जो है ना वो मिट्टी मिट्टी डालते फिरेंगे उसके ऊपर, छुपाते छुपाते फिरेंगे आप, और कितना छुपा सकते हैं, नहीं छुपा सकते चीजों को, खुसूसन आज के जमाने में तो आप किताबों को छुपा नहीं सकते। किताब में किसी शेख साहब ने लिख दिया, किसी शेख साहब ने जो है वो बयान के अंदर कोई बात कर दी, अब आप कैसे छुपाएंगे इस बात को? वो तो वायरल हो चुकी, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, सारी आवाम को उसका एक्सेस है, सारी दुनिया को उसका एक्सेस है, अब कैसे छुपाते फिरेंगे आप अपने शेख की गलती को, राइट। तो भाई गलती हो गई ना, तो इसका क्या जवाब है, जिसकी वजह से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं जी। क्या जवाब है इसका? जब शेख साहब की कोई गलती सामने आती है कि उन्होंने किसी चीज के बारे में गलत डिसीशन ले लिया था, किसी चीज के बारे में गलत राय रख ली थी, राइट, तो अब इसकी क्या जवाब है, इसका तावील, क्या तावील, क्या जवाब देंगे इसका? एक जुमले में सारे मसले हल हो जाते हैं। किसी शेख साहब ने दीनी मामले के अंदर कोई गलत ओपिनियन रख लिया, ठीक है ना, जो बाद में प्रूव हुआ कि नहीं उन्होंने, उनकी इज्तिहादी गलती थी ये, राइट। आइम्मा मुज्तहिदीन की गलती नहीं खुलेगी ना, बाकियों की तो गलती खुल सकती है। तो भाई क्या तावील, तावील जुमला जवाब मुकम्मल नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या तावील करेंगे आप इसकी? क्या एक ऐसा जुमला कहेंगे जिससे सारे मसले हल हो जाते हैं? सियासी मामलात के अंदर उलमा का एक मौकफ होता है, राइट, सियासत के अंदर उलमा बड़े अकाबरीन जो है वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि उन्होंने जिस मौकफ को सपोर्ट किया था वो मौकफ जो था वो सही नहीं था, राइट, जिस ओपिनियन को, जिस राय को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया, वो पॉलिटिकल पार्टी कल को पता चला कि वो सही नहीं थी भाई, उसने जो है वो गलत काम कर लिया था। तो क्या जवाब है इसका जिससे कि सारे मसले हल हो जाते हैं? हाँ, डरते डरते डायरेक्ट मैसेज में क्यों लिख रहे हैं, खुल के लिखे ना जी, कि वो कोई आलमुल गैब कोई थोड़ी थे। ये जुमला याद रखें, ये जुमला याद रखें कि वो कोई आलमुल गैब कोई थोड़ी थे, वो तो ज्यादा से ज्यादा मुज्तहिद थे ना, वो तो ज्यादा से ज्यादा मुज्तहिद थे, राइट, एग्जैक्टली वो मुज्तहिद थे, इज्तिहाद किया उन्होंने, और इज्तिहादी गलती जो है वो किसी भी आलम से हो सकती है, नेक नियत ही इज्तिहाद कर सकता है, बदनियत तो इज्तिहाद भी नहीं कर सकता। इज्तिहाद की तो शराइत में से एक शर्त नियत का सही होना, दूसरी शर्त इल्म का सही होना, यानी इल्म का सही होना नहीं बल्कि इल्म का सफिशियंट होना, सफिशियंट होना यानी जितना इल्म चाहिए होता है किसी एरिया के अंदर उतना इल्म होना, इसकी बुनियाद पर आप इज्तिहाद करते हैं। जिसके पास इल्म नहीं वो तो इज्तिहाद कर ही नहीं सकता, जिसकी नीयत खराब है वो तो मुज्तहिद बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब किसी की गलती सामने आएगी तो हमारे पास एक ही जवाब है उसका, भाई वो कोई आलमुल गैब कोई थोड़ी थे, राइट। तो हम जो है ना वो इस जब हम अपने शेख या अपने अकाबरीन या अपने जो है ना वो बड़ों उनके बारे में हम ये रवैया रखना शुरू कर देते हैं ना कि गोया के वो आलमुल गैब थे, अब हम जो है ना उनको फिर क्लियर, उनको अब जो है वो हम क्या कहते हैं एग्जोनरेट भी नहीं कर सकते, अब उनको जो है ना वो हम ये इससे यानी बाइज्जत बरी भी नहीं कर सकते इस गलती से, क्योंकि हमने तो उनको इल्मुल गैब का सर्टिफिकेट दिया हुआ था। अब गलती हो गई, अब क्या करें भाई, अब भाई ढकाते छुपाते फिरेंगे फिर, राइट? छुपाते फिरेंगे जो कि छुपा नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है छुपाना आपके लिए, ठीक है? तो ना भाई इस तरह की बहुत सारे मामले होते हैं, कल भी होते थे, आज भी होते हैं, कल भी होते रहेंगे, कि जिसमें बड़े बड़ों से जो है वो किसी मामले में इज्तिहादी गलती हो जाती है, ठीक है? और कल को वो चीज गलती खुल के भी सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे उलमाए कराम, बहुत सारे बड़े बड़े मशायख हैं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हकीम उल उम्मत, उन्होंने जो है वो लोगों को इजाजत खिलाफत दी, अपना खलीफा बनाया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, लोगों की इसलाह के ऊपर उनको मामूर किया, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद वो साहब जो है वो कुछ गलती में मुब्तला हो गए, कुछ गड़बड़ उनसे साबित हो गई, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इजाजत खिलाफत वापस ले ली उनसे, राइट? तो भाई अगर आपके पास इल्मुल गैब था, आपको जो है वो इंसान की दिल के भी हालात पता थे, आपको इंसान के जो है वो अंदर बाहर सारी चीजें जानते थे, तो आपने फिर ऐसी गलती क्यों करी कि उसको जो है वो लोगों का मुक्तदा बना दिया, इजाजत खिलाफत दे करके उसको अपना खलीफा बना दिया, और वो बंदा जो था वो तो इस काबिल ही नहीं था, कल को जो है वो उसने ऐसी बड़ी गलती करती कि आप खुद उससे इजाजत खिलाफत वापस ले रहे हैं। तो क्या जवाब है इसका? एक ही जवाब है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कोई आलमुल गैब कोई थोड़ी थे, राइट? उसी तरीके से आज के मशायख के साथ भी ऐसा होता है भाई, वो जो उनको अल्लाह ताला ने बसीरत दी है वो अपना इल्म इस्तेमाल करते हैं, अपनी इखलास इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, और इस बुनियाद पर जो है वो किसी को कोई मनसब देते हैं, लेकिन आलिमुल गैब तो नहीं है ना वो। उसी तरीके से सियासी मामलात के अंदर भी वो किसी को सपोर्ट कर देते हैं, किसी ओपिनियन को सपोर्ट कर, जरूरी नहीं है किसी पर्सन को सपोर्ट करें, किसी पार्टी को सपोर्ट करें, वो किसी मौकफ को सपोर्ट कर देते हैं, उनकी राय में उनकी इल्म के मुताबिक वो मौकफ जो है वो सही होता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो प्रूव हो जाता है कि ये मौकफ सही नहीं था, ये मौकफ सही नहीं था, तो फिर वो उससे या तो रुजू करते हैं या बात जो है वो गुजर जाती है, किताबों में आ जाती है, बस वो खुद ही दुनिया से गुजर जाते हैं। कल को लोगों को पता चलता है कि भाई हजरत ने तो ये फरमाया था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला बाद में जाकर के, राइट? हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जकरिया शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, उनको बड़े बड़े कशफी मामला भी उनके साथ प्रोवेन है, राइट? कशफो करामात भी उनके पास मौजूद थे, लेकिन उनकी आप बीती उठा करके देखें, उनकी आप बीती के अंदर जो तकसीम हिंद का चैप्टर है उसमें उनसे किसी ने पूछा कि ये जो तकसीम हो रही है, पाकिस्तान बन रहा है, हिंदुस्तान बन रहा है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में, है ना? वो बोलने वाले इस अंदाज में बात किया करते, तो हजरत ने आप बीती में इन बातों को लिखवाया है अपनी, राइट? तो उन्होंने अपनी एक राय दी कि भाई तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं जो हूँ वो तुम्हें अपनी राय बस बता, मतलब इसी तरह का है उसके अंदर, तफसील आप खुद खोल के देख लीजिएगा। उन्होंने अपनी राय दी कि देखो ये जितना जो है ना वो सब कुछ इतना बड़ा बड़ा बड़े बड़े मदारिस बने हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें बनी हैं, तो जो हिंदुस्तान का इलाका है ना, तो यहां पर तो जो लोग छोड़ के चले गए और हिंदुओं की अक्सरियत हो गई, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कुछ खत्म हो जाएगा, और वो जो नया इलाका है तो वहां पर तो कुछ है ही नहीं पहले से, पाकिस्तान का जो इलाका है वहां तो पहले से ही कुछ नहीं है। तो वो तकसीम के खिलाफ थे, वो उन उलमा में से थे जो कि तकसीम के खिलाफ थे, तो उसकी वजूहात थी, कुछ बातें उनकी बिल्कुल सही साबित हुई, जैसे खून खराबा होगा, ये उन लोगों ने कहा कि तकसीम होगा तो तकसीम होगी तो बहुत खून खराबा होगा, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक हो गई, वाकई बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, लेकिन एक उनकी ये भी ओपिनियन था कि भाई फिर जो हमारे मदारिस और खानकाहें जो बनी हैं ये सिलसिला दोबारा से शुरू नहीं हो सकेगा, और जो पाकिस्तान की जगह है वहां पर तो मौजूद भी नहीं है, वहां पे ये मदारिस कैसे बनेंगे, सारे जो मदारिस हैं वो तो यूपी के अंदर हैं, राइट, थाना भवन का इलाका, और जो है वो देवबंद का इलाका, और जो है वो मजाहिरुल उलूम, राइट। तो ये सब जो है वो कैसे बनेगा? लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इंडिया के अंदर जो मदारिस थे वो भी रिवाइव कर गए, और पाकिस्तान के अंदर जो मदारिस थे वो तो ऐसा लगता कि और भी आगे बढ़ गए, राइट। जो इंडिया से दो चार बड़े बड़े अकाबरीन यहां पर आ गए, दारुलूम गौरंगी बनाया उन्होंने कराची के अंदर, उन्होंने दारुलूम बिनोरी टाउन बनाया, उन्होंने जो जामे अशरफिया लाहौर बनाया, उन्होंने खैरुल मदारिस बनाया, और वो ऐसे आगे बढ़े कि दुनिया जहां के ऊपर छा गए वो। तो भाई हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कि ये बात तो गलत प्रूव हो गई, और किताब के अंदर मौजूद है, कहां से छुपाओगे आप इस बात को? तो ये जो इल्मुल गैब का सर्टिफिकेट हम खामखा देते फिरते हैं, जरूरत नहीं है, हम उल्टा अपना ही नुकसान करते हैं खाली। भाई इज्तिहाद किया था, इज्तिहाद में कोई इज्तिहाद सही भी होते हैं, कोई इज्तिहाद गलत भी हो जाते हैं, ठीक है ना। और आखिरी बात भी सुन लीजिए, वो ये है कि ये जो हम इल्मुल गैब समझते फिरते हैं ना कि जी हमारे शेख साहब को सब कुछ पता है, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे कुरानी मामलात की भी नफी कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हम बड़ा नुकसान, यानी बहुत सारे किस्म के नुकसान, एक किस्म का नुकसान नहीं कर रहे होते, और भी किस्मों के नुकसान कर रहे होते हैं। वो क्या, जैसे मिसाल के तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया, राइट। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, और कैसी शान के नबी थे कि उनके पास ना सिर्फ इंसानों की फौजें होती थी बल्कि जिन्नों की फौजें होती थी, और चरिंद परिंद और हैवानात के सारे उनके ताबे होते थे, और उनको बोलियां भी सबकी आती थी, राइट। ऐसी बादशाहत किसी और नबी के पास, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और नबी के पास ऐसी बादशाहत नहीं थी, राइट। पता है ना ये सारी बातें, लेकिन अपने साथ हुदहुद को रखते थे कि भाई कहां पे पानी है, नीचे जमीन के नीचे पानी किधर है, वो हुदहुद बताता था उनको। चले ये बात तो फिर रिवायात से पता चलती है ना कि हुदूद पानी का बताता था, कुरान मजीद में तो ये नहीं है कि हुदूद पानी का बताता था, इनके पास इल्मुल गैब था तो फिर हुदूद रखने की क्या जरूरत थी, ठीक है। लेकिन जो कुरान मजीद के अंदर चीज शामिल है, मौजूद है, वो क्या है कि मलका सबा की हुकूमत के बारे में, मलका सबा के जो जो उनका पूरा का पूरा मामला वहां पर था, वो किसने आकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया? किसी इंसान ने भी नहीं बताया, किसी जिन ने भी नहीं बताया, जविल उकूल में से किसी ने नहीं बताया, गैर जविल उकूल हैवानात में से एक ने आकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया उनके बारे में, राइट। तो जब हम अपने बड़ों को इल्मुल गैब का सर्टिफिकेट देते हैं ना कि जी उनको पहले से सब कुछ पता है, तो अब जो है ना ये बेचारे जो हुदहुद किस्म के लोग होते हैं ना, हमारी हैसियत तो उस हुदहुद से भी कम है, हमारी हैसियत तो हुदहुद से भी कम है। वो फिर नबियों के साथ वाला हुदूद था, और जैसे हमने अपने मशाइख से सुना कि उस हुदूद को जो है वो कुछ जन्नत में दाखिल किया जाएगा, हमें तो अपना कुछ पता नहीं कि हम किधर जाएंगे, राइट। उसको तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिला हुआ है उस हुदूद को, हमें तो इतना भी नहीं मालूम अपने बारे में। लेकिन जो हुदूद वाला जो जॉब रोल है, हुदूद वाला जॉब रोल जो है, वो तो आपने आउट ऑफ जॉब कर दिया ना, वो तो आपने आउट ऑफ जॉब कर दिया, ठीक है ना। तो अब जो है ना वो भाई वो दुनियावी मामलात थे, जो नबी होता है वो दीनी उलूम के बारे में सबसे ज्यादा आलम होता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों ये बात कही थी कि जब आदमी ने पूछा कि सबसे ज्यादा आलम कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम जवाब दिया कि मैं हूं। वो क्यों कहा? क्योंकि वो वक्त के नबी अलैहिस्सलाम थे, और शरई उमूर के अंदर वक्त के नबी ही सबसे ज्यादा आलिम होते हैं, इस वजह से जवाब दे दिया। लेकिन अल्लाह ताला को ये बात भी पसंद नहीं आई, अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा नहीं, तुमसे भी ज्यादा इल्म रखने वाले कौन से इल्म रखने वाले? वो इल्म लदुन्नी रखने वाले जो है वो खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा थे, राइट। तो शरीयत के मामलात में थे ना, ये जो हुदहुद ने आकर के जो जो हालात हाजरा की जो खबर दी है कि भाई यमन के अंदर एक मलिका है, उस मलिका के पास ये सब कुछ मौजूद है, तो ये शरीयत का इल्म तो नहीं था। तो शरीयत के अलावा जो उलूम है ये तो हुदहुद जैसे लोग भी जो है वो आगे प्रोवाइड कर सकते हैं ना। अब हम जो है वो जब इस किस्म का ओपिनियन, इस किस्म का जो है वो गुमान, और असल में गुमान जो है ना ये होता नहीं है, ये झूठ होता है। ये हम उसको ना अपनी मोहब्बत का जो है ना वो दलील समझते हैं कि हमें अपने बड़ों से इतनी मोहब्बत है कि हम समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है। ये हमारी मोहब्बत की दलील होती है, लेकिन ये झूठ होता है सर, असल में ये झूठ होता है। ये हमें कोई मोहब्बत शोहबत नहीं होती, हम जो है ना वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड एन ईजी वे आउट। ये हमारी सुस्ती होती है, ये हमारी काहली होती है, या ये हमारी गैर संजीदगी होती है। ये हमारी गैर संजीदगी होती है, को जो है ना वो बातें भी नहीं बताना चाहते जो कि हमें पता है, उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है, हम उनको वो बातें नहीं बताना चाहते अपनी गैर संजीदगी। वी आर नॉट, हमारा हमारी नीयत की खराबी होती है, हमारी नीयत की खराबी होती है कि हम अपने बड़ों को ये बात नहीं बताना चाहते जो हमें पता है लेकिन उनको नहीं पता है। भाई वो शरीयत के आलिम है ना, वो दीन के आलिम है ना, वो मेडिकल साइंस के आलिम तो नहीं है। तो कोई मेडिकल डॉक्टर जो है वो इखलास के साथ किसी शेख साहब को मेडिकल साइंस के बारे में कोई बात बताएगा तो वो अपने आप को हुदहुद समझ करके बताए ना, हुदहुद समझ करके बताए ना, ये मत समझ करके बताए कि मैं शेख साहब से अफजल हो गया। देखो शेख साहब को तो पता नहीं था, मुझे पता था, मैंने शेख साहब को बताया। नहीं, अपने आप को हुदहुद समझो, बल्कि उस वाले हुदहुद से भी कमतर अपने आप को समझो, लेकिन बताओ ये वाली बात है अपने बड़ों। उसी तरह सियासत की कोई बात है, उसी तरह टेक्नोलॉजी की कोई बात है, राइट, हालात हाजरा की कोई बात है। अब आप एज्यूम करके बैठे हुए हैं कि जी ये शेखुल इस्लाम हैं, ये फलाने पीर साहब हैं, ये फलाने शेख साहब हैं, इनको तो सब पता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। क्या, कैसे पता उनको सब कुछ कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? कैसे पता उनको सब कुछ कि कोविड की हकीकत क्या है? क्या वही उतरती है उनके ऊपर कि कोविड की हकीकत क्या है? ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे ना कि कोविड की हकीकत क्या है, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे ना कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। ये शेख साहब को तो नहीं पता, ये पीर साहब को तो नहीं पता, राइट? तो बस अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि जी जो वो कह रहे हैं हालात हाजरा के बारे में, वो बस वो ऊपर से उनके ऊपर इल्का हुआ है उनके ऊपर, राइट? और उनका जो राय है, उनकी जो ओपिनियन है, वो गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो इतने बड़े अकाबिर हैं, इतने बड़े जो है वो मौलवी साहब हैं, इतने बड़े जो है ना वो इल्म वाले हैं, बस उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई गलती उनसे? और कोई अगर इस किस्म की कोई बात कर दे, उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, बेअदब, हद अदब, और इस किस्म की जो है ना वो उसको जो है वो एकदम ही जो है ना वो क्या रांदा दरगाह कर देंगे उसको उठा करके, शैतान की तरह रांदा दरगाह कर देंगे उसको उठा करके। इसने हजरत का मुकाम नहीं समझा, इसने तो बेअदबी कर दी, इसने तो जो है ना वो ये तो बदगुमान हो गया मशायख के साथ, ये हो गया वो हो गया। इन्होंने लिखा था कि डायरेक्ट मैसेज ने, अच्छा वो आपने डायरेक्ट मैसेज लिखा भी आपकी तरह ख्याल खींचने, इन्होंने लिखा था कि इस पर इश्काल हो सकता है कि गलती कौन डिफाइन करेगा, मतलब हर कोई अपनी अकल से बड़ों की बातों को गलत कहकर कहेगा कि ये शेख आलिमुल गैब नहीं है। इसका जवाब आप खुद ही दे दीजिए, क्योंकि मैं जवाब तो दे चुका हूं इसका। क्या जवाब है इसका? इन्होंने मैसेज लिखा कि इस पर इश्काल ये हो सकता है कि ये गलती कौन डिफाइन करेगा, मतलब हर कोई अपनी अकल से बड़ों की बातों को गलत कहकर कहेगा कि ये शेख आलिमुल गैब नहीं है। जवाब आप खुद ही दें इसका, या कोई और भी जवाब दे सकता है इसका। क्या जवाब है भाई इसका? ये किसी लेवल पर अकीदे की गलती है। हाँ, अकीदे की तो गलती है ना, किसी लेवल पर है, लेकिन अकीदे की तो गलती है ना ये। जी, क्या जवाब है इसका? सभी आलिमुल गैर हैं, अल्लाह ताला के अलावा आलिमुल गैब हैं सभी। क्या बोल रहे हैं आप जी? क्या जवाब है उस ऊपर वाले इश्काल का? इश्काल तो इश्काल होता है ना भाई, इल्मी इल्मी सवाल होता है, तालिब इल्माना सवाल होता है। तो क्या क्या जवाब है इसका? इनको दीगर मालूमात पहुंचाई जाए फिर उनकी राय ली जाए। हाँ, इनको मालूमात पहुंचाई जाए फिर उनकी राय ले ली जाए, ठीक है ना? मालूमात तो पहुंचाए ना आप पहले, आप समझ रहे हैं उनको पहले से जो है ना वो वही होती है सारी की सारी, और पहले से सारी की सारी वही हो चुकी है उनको सब कुछ। एज्यूम करके बैठे हुए, गुमान करके बैठे हुए कि मेरे शख्स से शख्स आपको सब कुछ पहले से पता है, आपको क्या पता कि उनको सब कुछ पहले से पता है? फील्ड्स एक्सपर्ट विल डिटरमिन, फील्ड्स एक्सपर्ट। यहां पे इस आजिज ने ये बात पीछे कर दी है कि भाई नबी जो है वो शरीयत का आलम आलम होता है, शरीयत का सबसे ज्यादा आलम वो नबी होता है, शरीयत के अलावा बातों का तो वो आलम नहीं होता। जैसे में जैसे इल्म लदुन्नी के अंदर खिजर अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। इसी के ऊपर कयास करें कि आज के दौर के अंदर भी जो उलमा है, मशाइख हैं, उनके पास जो हमसे बहुत ज्यादा इल्म है, तो भाई वो शरीयत का इल्म है ना। हालात हाजरा का इल्म तो शरीयत का इल्म नहीं होता, राइट? अब आप जो है वो ये करनी, बसीरत है उनके पास सबसे ज्यादा, तो बसीरत जो है ना वो उनको सब कुछ बता देगी। भाई बसीरत जो है वो वही नहीं होती है यार। हम तो कोविड की मिसाल दे रहे हैं, हम तो सियासत की मिसाल दे रहे हैं, हम तो दुनिया के अंदर जो 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 हैपनिंग्स हो रही है, जो टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर मौजूद है, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिसको कि एआई के बारे में पता है, जिसको कि जो है वो डीप फेक के बारे में पता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी है ना ये, डीप फेक टेक्नोलॉजी, राइट? अब जो शेखुल हदीस साहब है, शेखुल इस्लाम साहब है, जो भी साहब हैं, उनको डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। अब आप कहें कि जी के हु विल डिटरमिन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अल्लाह के बंदे, तुम्हें अल्लाह ताला ने एआई का एक्सपर्ट बनाया है, ठीक है ना? उनको तो एआई का एक्सपर्ट नहीं बनाया है, ठीक है? अपनी फील्ड का तो काम करो ना यार, मेडिकल डॉक्टर हो तो अपनी फील्ड का तो काम इखलास के साथ करो ना। अब तुम जो है वो मुफ्ती साहब को जो है वो मेडिकल साइंस की गलत इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हो, यू नो कि ये तुम्हारे फील्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है जैसा कि दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है, लेकिन तुम मुफ्ती साहब को जो है ना वो गलत जाकर के बता रहे हो कि जी बस जो WHO वाले कह रहे हैं, जो बस जो ये फलाने जो है वो अखबारात के अंदर जो आ रहा है बस वही सही है, हालांकि तुम्हें पता है कि ये सही नहीं है। तो ये तुम्हारा मसला है ना, तुम झूठ बोल रहे हो मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब को तुम गलत बातें फीड कर रहे हो। अब इसकी बुनियाद पर अगर वो कोई फतवा दे देते हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। उसी तरीके से जो है वो सियासत के अंदर भी, उसी तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी, ठीक है? तो ये जो है ना बेवकूफी की बातें जो है ना, ये हमें बचाएंगी नहीं, ये बल्कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। इनफिरादी तो हो रहा होता है कि इंसान बदगुमानी में मुब्तला हो जाता है अपने मशाइख के बारे में कि उन्होंने गलत राय कैसे दे दी किसी चीज के बारे में, बदगुमानी में मुब्तला हो गए। हम तो यहां पे बदगुमानी से बचने की बात कर रहे हैं कि ऐसी बेवकूफी की बातें करके हम बदगुमानी में मुब्तला हो जाते हैं उनके बारे में कि उन्होंने कैसे गलत बात कर दी थी, 2 साल के बाद पता चला कि ये तो ऐसा था ही नहीं जैसे कि उन्होंने बात करी थी, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि भाई वो मुक्तदा हैं, वो लोगों को, लोग उनकी तरफ नजरें उठा करके देखते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या मौकफ रखना चाहिए। अब जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं वो गलत बातें ऊपर फीड अगर करेंगे उनको, तो उनका एक गलत ओपिनियन बन जाएगा उसकी बुनियाद पर, क्योंकि वो आलमुल गैब नहीं है। अब उनका किसी हालात हाजरा के टॉपिक के ऊपर जब गलत ओपिनियन बन जाएगा, तो फिर भाई कितने सारे लोग जो है वो जो कि उनसे मोहब्बत करते हैं या जो कि उनको फॉलो करते हैं, तो उनका भी गलत ओपिनियन बन जाएगा ना। तो यू डू योर जॉब लाइक अ हुदहुद, याद रखे इस बात को, हुदहुद की तरह से अपना काम करो। कुरान मजीद में जो है ना ये किस्सा आपको बेड टाइम स्टोरी के लिए नहीं बताया गया था कि बच्चों को सुलाने के लिए जो है वो हुदहुद और सुलेमान अलैहि सलाम की स्टोरी पढ़ लिया करना, या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जो है वो हुदहुद और सुलेमान अलैहि सलाम की स्टोरी पढ़ लिया करना, राइट? इसलिए बताया गया था कुरान मजीद के अंदर ये वाला किस्सा, कहानी की किताब बनाने के लिए कुरान मजीद को। अपना काम करो और अपने आप को बड़ा मत समझो, उनसे बड़ा मत समझो, उनको जो है वो उनको अपने से बुरा मत समझो, उनको अपने से कम इल्म मत समझो कि उनको तो ये बात पता नहीं थी। भाई क्यों बताओ उनको ये वाली बात, आलमुल गैब तो नहीं है वो। अभी भी किसी को बात ना समझ में आई तो पूछ लिया अभी फिर से, क्लियर है? आइंदा तो नहीं करेंगे गलती। हुदहुद समझे अपने आप को और अपने बड़ों को जो है वो वरासतुल अंबिया समझें, और अपने आप को गैर ज़वेल उकूल, मेरे अंदर तो कोई अकल ही नहीं है, ठीक है ना? बस जो अल्लाह ताला ने आपको नॉलेज दी है, जो इंफॉर्मेशन दी है, वो इखलास नीयत के साथ आगे पहुंचा दें, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह रहे। और अगर आप करेंगे तो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। इस फकीर का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है, और इस फकीर ने बहुत बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करके इस बात को क्लियर किया है, नाउ इफ समबडी डज इट, अल्लाह से उसका हिसाब होगा, वो अल्लाह को जवाब देगा, ठीक है ना? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब आगे का कुछ पढ़ कितना टाइम रह गया? टाइम तो खत्म हो गया क्योंकि 7:30 से 8:15 तक की क्लास थी। चले, अगर ये बात ही समझ में आ गई तो आज की क्लास इंशाल्लाह फायदे की सबब बन जाएगी हमारे लिए। आगे का इंशाल्लाह फिर हम बुध के दिन पढ़ लेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।